समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। AIR FM गोल्ड चैनल पर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे में आपका अभिनंदन करते हैं दो मेजबान रोज की तरह ही, और इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे मेरे साथ, और मेरे साथ हैं सायरा मुस्तफा, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। गुड मॉर्निंग सायरा।
गुड मॉर्निंग देव। नमस्कार आदाब, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस फर्स्ट एपिसोड ऑफ आज सवेरे, वेयर वी ब्रिंग यू आवर एवर एक्साइटिंग डेली न्यूज हेडलाइंस एंड ऑफ कोर्स we give you an update from your very own city in our Metro News section. और जो लास्ट सेक्शन है उसका तो सबको ही इंतजार रहता है, इन विच वी गो थ्रू द पेजेस ऑफ हिस्ट्री, रिमेम्बरिंग दिस डे, व्हाट मेड दिस डे स्पेशल, एंड दोज पर्सनालिटीज हु वर आइदर बोर्न ऑन दिस डे और बिड अड्यू टू दिस वर्ल्ड। बट फर्स्ट लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस देव।
जी, शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ, क्योंकि है ये न्यूज मैगजीन का प्रोग्राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में लोकतंत्र की एक प्राचीन और अखंड संस्कृति है। दक्षिण कोरिया के सियोल में आयोजित लोकतंत्र शिखर सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सर्वसम्मति, खुली बातचीत और स्वतंत्र चर्चा भारत की पहचान रही है। श्री मोदी ने कहा कि अब से कुछ ही सप्ताह में भारत लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव का गवाह बनेगा। उन्होंने कहा कि 1 अरब मतदाताओं के मतदान करने के साथ ये मानव इतिहास में सबसे बड़ा चुनावी अभ्यास होगा। उन्होंने कहा कि भारत के लोग एक बार फिर लोकतंत्र में अपना विश्वास जताएंगे। निर्वाचन आयोग ने केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को रेलवे और हवाई अड्डों जैसी सरकारी संपत्तियों से सभी अनाधिकृत राजनीतिक पोस्टरों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने इस मामले में रिपोर्ट आज शाम 5 बजे तक भेजने को कहा है। आयोग को कई पक्षों से शिकायतें मिल रही हैं कि अनाधिकृत राजनीतिक विज्ञापन देश के कई स्थानों पर अभी भी प्रदर्शित किए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने अपने निर्देश का अनुपालन न होने या आंशिक अनुपालन होने को गंभीरता से लिया है। आयोग ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासनों को सभी अनाधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों को तुरंत हटाने के निर्देश जारी किए हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा पहले चरण के मतदान के लिए अधिसूचना जारी करने के साथ ही लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। इस चरण में 19 अप्रैल को 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 102 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होगा। पहले चरण में तमिलनाडु की 39 सीटों, राजस्थान की 12 सीटों, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों, उत्तराखंड, असम और महाराष्ट्र की 5-5 सीटों, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय की 2-2 सीटों और छत्तीसगढ़, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और पुदुचेरी की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। इस महीने की 27 तारीख तक नामांकन भरे जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को की जाएगी। उम्मीदवारों के लिए नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 30 मार्च होगी। बिहार में नामांकन भरने की अंतिम तिथि 28 मार्च है। यहां नामांकन पत्रों की जांच 30 मार्च को होगी। उम्मीदवार 2 अप्रैल तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। बिहार में मतदान 19 अप्रैल को होगा। इसके अलावा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए भी आज अधिसूचना जारी की जाएगी। दोनों राज्यों में मतदान 19 अप्रैल को होगा और मतगणना 2 जून को होगी।
इन अ मेजर ब्रेकथ्रू, द स्पेशल टास्क फोर्स ऑफ असम पुलिस अप्रिहेंडेड द हेड ऑफ ISIS इन इंडिया, हारिस फारूकी, along with another operative at Dhubri yesterday. The CPRO of the Assam Police said that acting on inputs provided by the central agencies, the SAF team arrested them while they sneaked into the country crossing the international border. They have been taken to Guwahati for questioning. Sources said that both of them will be handed over to the National Investigating Agency. Ukrainian President Volodymyr Zelensky has expressed his gratitude towards India's support for Ukraine's sovereignty and territorial integrity, humanitarian aid, and active participation in peace formula meetings. In a social media post, Zelensky said that it will be important for Ukraine to see India attend the inaugural peace summit, preparations for which are going on in Switzerland. The statement came after a telephonic conversation with Prime Minister Modi yesterday. The two leaders discussed the development of bilateral relations. Zelensky said Ukraine is interested in strengthening trade and economic ties with India, particularly in agricultural exports, aviation cooperation, and pharmaceutical and industrial product trade. Ukraine also wishes to welcome Indian students back to Ukrainian education institutions. Consulate General of India in Hong Kong has issued a pre-arrival registration PAR advisory for Indian travelers to Hong Kong. Indian nationals planning to visit Hong Kong Special Administrative Region or SAR for a stay not exceeding 14 days are required to apply for online pre-arrival registration. A successful PAR is valid for a period of 6 months and multiple visits. Details in the PAR must exactly match those in the passport. The Consulate General in Hong Kong has urged Indian nationals visiting Hong Kong to follow Government of Hong Kong Special Administrative Region's regulations in this regard to minimize the possibility of any inconvenience to themselves. It stressed that holding a valid PAR is not a guarantee of the registrant's successful entry into the region. The Consulate General said instances have come to notice when not following the requirements have resulted in Hong Kong immigration refusing permission to land. This entails such persons returning to port of embarkation from India by the same airline as well as certain hardships at the airport waiting for repatriation. Some sports news there. The International Olympic Committee, IOC, has announced that the Russian and Belarusian athletes will not be allowed to participate in the Parade of Nations at the opening ceremony of the Paris Games. The IOC director, James McLeod, said, "The athletes who will be competing in the games under a neutral flag will not participate in the parade and teams during the opening ceremony since they are individual athletes." He said a decision on whether they would participate in the closing ceremony had not yet been made.
जी, और Swiss Open Super 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के किरण जॉर्ज पुरुष सिंगल्स की प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं. किरण ने पहले दौर में जापान के ताकुमा ओबायाशी को सीधे सेटों में 21-18, 21-19 से हराया. इससे पहले मिक्स डबल्स में भारतीय जोड़ी सतीश कुमार करुणाकरण और आदिया वरियास ने मलेशियाई जोड़ी रॉय किंग याप और वैलेरी सीओ को 21-18, 11-21, 21-19 से पराजित कर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई. पूर्व चैंपियन किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन ने भी पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं. कल श्रीकांत का सामना मलेशिया के वी जिया ली से होगा जबकि लक्ष्य सेन ताइवान के चिया हसिन ली के खिलाफ मुकाबले में उतरेंगे. महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु का कल दूसरे दौर में जापान की टोमोका मियाजाकी से मुकाबला होगा. महिला डबल्स में भारतीय जोड़ी तनिषा क्रेस्टो और अश्विनी पोनप्पा का कल प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रुई हिरोकामी और युना काटो की जोड़ी से सामना होगा. इसी राउंड में गायत्री गोपीचंद और ट्रिसा डॉली एक अन्य भारतीय जोड़ी प्रिया कोंजेम्बाम और श्रुति मिश्रा से भिड़ेंगी. और मुख्य समाचारों के बाद हेडलाइंस के बाद हम रुख करते हैं महानगरों का और जानते हैं देश के प्रमुख महानगरों से क्या खबरें हैं. तो सायरा, आपके पास क्या खबरें हैं चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से?
वेल देव, लेट्स स्टार्ट विद चेन्नई. द मद्रास हाई कोर्ट हैज सेड दैट यूट्यूबर्स डोंट हैव द लाइसेंस टू टार्निश द रेपुटेशन ऑफ अदर्स. द कोर्ट डायरेक्टेड द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू डिपॉजिट द रेवेन्यू जनरेटेड बाय द यूट्यूबर फॉर सच अ वीडियो. Justice N. Satish Kumar passed the order on a suit moved by Laika Productions seeking 1 crore damages from the YouTuber for publishing the defamatory video. The company alleged that there has been a wrong allegation against political parties, elected representatives, judiciary and government authorities claiming to be a whistleblower. The judge also passed an interim injunction against the YouTuber from publishing further videos against the company in future. WeWork India, an office space provider, has entered the Chennai market. It has leased more than 1.3 lakh square feet of space in the Olympia cyberspace, marking the company's expansion into the 8th city in the country. Scheduled to open in early June this year, it will house more than 2,000 desks, the company has said. Karan Virani, the CEO, told that the company has more than solutions for diverse businesses. It has more than 90,000 desks in 54 locations, spread over 7 cities. Moving on to Bengaluru, Bruhat Bengaluru Mahanagarapalika has started door-to-door surveys to identify aged voters above 85 years of age and those with disabilities. The survey team will get 12D forms filled by such voters, termed as AVASC and PWD voters, so that they can avail all postal ballots. They can avail postal ballots. Such voters can cast their vote on the designated days fixed within 5 days of the notification. The commission has said that the AVSC and PWD voters can fill 12D forms online as well on the website www.eci.gov.in. It is also clarified that those filling the forms and adopting for the postal ballot will not be allowed to vote on voting day along with the general public. Hence, the commission has requested such special category voters to cast their vote on the designated day, which is fixed within 5 days after the notification for 7 phases of Lok Sabha polls. And moving on to Hyderabad, in Telangana, about 40 companies of Central Police Forces have reached various districts of the state in view of the Lok Sabha polls. The election authorities have informed that the police personnel have been conducting flag marches at different places, ensuring the people that they can exercise their right to vote in a free environment. Flag march was held by the Central Forces and State Police in the Khammam and Nalgonda regions yesterday. Khammam Commissioner of Police Anil Dutt said the flag marches are being conducted to ensure that people could exercise their franchise in a free environment. He said arrangements are being made to conduct the parliamentary elections in a transparent manner, without any law and order issue, and measures have been taken for tight security in critical polling stations with advanced planning. So, Dave, this was the buzz that I had from these three cities of Chennai, Bengaluru and Hyderabad. What is the latest that you have from the other cities?
Ji. दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिए गए समन पर प्रवर्तन निदेशालय से स्पष्टीकरण मांगा है। उच्च न्यायालय ने यह निर्देश केजरीवाल की याचिका पर दिया है। इस मामले पर प्रतिक्रिया में भाजपा ने कहा है कि न्यायालय की प्रारंभिक सुनवाई से ये स्पष्ट है कि ईडी के समन वैध हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि ये समन मुख्यमंत्री केजरीवाल को व्यक्तिगत स्तर पर दिए गए थे, जिससे उनकी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली नगर निगम की महापौर डॉ शैली ओबेराय ने कहा है कि राजधानी में अवैध पार्किंग एक बड़ी समस्या बन चुकी है। एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए महापौर ओबेराय ने बताया कि शहर के विभिन्न स्थानों में अवैध पार्किंग में लोगों से जबरन वसूली की जाती है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के 12 जोन में 403 नगर निगम द्वारा अधिकृत पार्किंग सेवा है और इसके अतिरिक्त बाकी सारे पार्किंग अनाधिकृत हैं। डॉक्टर ओबेराय ने बताया कि इससे न केवल लोगों को समस्या होती है बल्कि निगम के राजस्व को घाटा होता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि निगम इसके विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही उन्होंने complaintsell@gmail.com नाम से एक ईमेल आईडी भी जारी की, जिस पर आम नागरिक अवैध पार्किंग से जुड़ी समस्याओं को दर्ज करा सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने कुलपति प्रशिक्षण योजना की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के अतिरिक्त मासिक मानदेय प्रदान किया जाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय ने बताया कि ये प्रशिक्षण विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों में द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए लागू है। ये प्रशिक्षण 6 महीने तक चलेगा, जिसके तहत विद्यार्थियों को सप्ताह में 10 से 12 घंटे प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अंत में उन्हें उनके काम के अंतर्गत एक संस्तुति पत्र भी प्रदान किया जाएगा। विद्यार्थी इस योजना का लाभ अपने पाठ्यक्रम की अवधि में एक ही बार उठा सकते हैं। प्रशिक्षण योजना में पंजीकरण करने के लिए इच्छुक छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट udaymodaydu.in, जिसकी स्पेलिंग है udaymodaydu.in, द्वारा अपना नाम दाखिल करा सकते हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मेडिकल की छात्राओं के साथ हुए यौन उत्पीड़न मामले में उपराज्यपाल विनय सक्सेना से कार्रवाई करने की मांग की है। उपराज्यपाल को लिखे एक पत्र के माध्यम से श्री भारद्वाज ने बताया कि जांच कमेटी इस मामले में देरी कर रही है और अब तक रिपोर्ट नहीं आई है। उन्होंने उपराज्यपाल से कहा कि छात्राओं पर शिकायत वापस लेने का दबाव डाला जा रहा है। श्री भारद्वाज ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य सचिव ने उनसे ये घटना छिपाई है। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल को ये पत्र इसलिए लिखा गया है क्योंकि मुख्य सचिव ने कहा कि ये मामला उपराज्यपाल के अधीन है। श्री भारद्वाज ने इस मामले पर शीघ्र कदम उठाने की मांग की है। मुंबई का रुख करते हैं, जहां महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचना दी है कि वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भुगतान डिफॉल्ट मामले के संबंध में IIFL कमोडिटीज लिमिटेड की संपत्तियों की कुर्की के लिए एक अधिसूचना जारी करेगी। संपत्तियों की कुर्की मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा लगभग 5,600 करोड़ रूपये के कथित NSEL घोटाले की जांच के बाद की जाएगी। सुनवाई के दौरान प्रमुख सचिव अनूप कुमार सिंह ने अदालत को आश्वासन दिया कि राज्य परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना कार्रवाई करेगा। याचिका में अंतिम निर्णय के बारे में मामला 2014 में शुरू किया गया था, जब एक ब्रोकर द्वारा गलत बयानी के कारण एक निवेशक को नुकसान हुआ था, जिसमें एनएससीएल बेहद जोखिम मुक्त है और प्रतिवर्ष 15-18% का गारंटीकृत रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है, ऐसी सूचना दी गई थी। याचिकाकर्ता ने 2022 में IIFL कमोडिटीज की संपत्तियों की कुर्की की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी महिला को केवल उसके बुजुर्ग ससुराल वालों की मानसिक शांति के लिए उसे घर से बेघर या बेदखल नहीं किया जा सकता। अदालत ने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम के तहत मामलों से निपटने वाले एक न्यायाधिकरण द्वारा प्रारित आदेश को रद्द करते हुए टिप्पणी की, जिसमें याचिकाकर्ता महिला को उसके ससुराल वालों की शिकायत पर उसके वैवाहिक घर से बेदखल करने का आदेश दिया गया था। लगभग 27 वर्षों से विवाहित याचिकाकर्ता अपने पति के साथ रह रही थी। पति पत्नी के बीच कुछ वैवाहिक कलह के बीच ट्रिब्यूनल ने 2023 में एक आदेश पारित कर जोड़े को फ्लैट खाली करने का निर्देश दिया था। और कोलकाता का रुख करते हैं, जहां कल कई अभ्यर्थियों ने पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग के कार्यालय के समक्ष धरना दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि राज्य सरकार की खाद्य विभाग के लिए सब इंस्पेक्टर भर्ती की परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ है और प्रश्न पत्र लीक हुआ है। परीक्षा इस साल 16 और 17 मार्च को आयोजित की गई थी। प्रदर्शनकारियों ने पीएससी कार्यालय का घेराव भी किया। महानगरों से जुड़ी खबरों के बाद अब हम जान लेते हैं महानगरों के मौसम का हाल भी। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह 15 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया और दिन में 32 डिग्री तापमान रह सकता है और धूप भी रहेगी, आसमान साफ रहेगा, लेकिन कहीं कहीं पर हल्के बादल भी दिखाई देने शुरू होंगे। आज से हवाओं का रुख भी बदलेगा। कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम 27 डिग्री रह सकता है। और मुंबई में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 22 और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। सारा चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद का मौसम कैसा रहेगा?
Well, Bay, Chennai is expected to have a partly cloudy sky today. The minimum temperature was 25, while maximum will be around 33 degrees Celsius. Bengaluru is also expected to have a partly cloudy sky. The temperature will hover between 21 and 34 degrees Celsius. Hyderabad will have a cloudy sky with haze, and temperature will hover between 21 and 33 degrees Celsius. And now there we have come to that section of our show, in of course, in which we remember what made this day special, the special events that took place on this day. Well, in 1836, the National Library was established. In 1939, Gandhiji called on the world to disarm.
जी, और उससे पहले चलें तो 1857 में जापान की राजधानी टोक्यो में आए विनाशकारी भूकंप में लगभग 1,07,000 लोगों की मौत हो गई थी।
Very tragic. On this day, 1957, India's national calendar came into force. Also, in 1966, Indian remote sensing satellite IRSP-3 was placed into the polar orbit. This carried remote sensing payload and an X-ray astronomy payload.
जी, और पर्शिया का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर ईरान किया गया था आज के दिन, और वो साल था 1935 का। 1954 में हिंदी सिनेमा के प्रतिष्ठित फिल्मफेयर पुरस्कार की शुरुआत की गई थी आज के दिन। वर्ष 1971 में भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने अपने करियर का पहला शतक लगाया था।
On this day, 1979, the Cytology Research Center was set up at New Delhi, which was renamed as the Institute of Cytology and Preventive Oncology in 1988. In 1979, Morarji Desai, the then Prime Minister, inaugurated the Backward Classes Commission in New Delhi. Also, on this day, 1992, India's second submarine, Shankul, joined the Navy. And in 1996, VSL VD3 was launched successfully. Also in 1996, Supreme Court upheld that attempt to suicide and its abetment would continue to be punishable offences.
और वर्ष 2000 में ताइवान की संसद ने चीन के साथ सीधे तौर पर व्यापार और परिवहन पर पिछले 50 सालों से चले आ रहे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया था। वर्ष 2006 में रूस और चीन ने रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में तीन बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे, और 2008 का वो साल था जब वैज्ञानिकों को शनि ग्रह के चंद्रमा टाइटन पर महासागर होने के साक्ष्य मिले थे। और आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि आज रंगभेद उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय रंगभेद उन्मूलन दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि समाज में व्याप्त इस रंगभेद की कुरीति को समाप्त किया जा सके जो मानवता पर सीधा प्रहार करती है। ये मानवाधिकार का उल्लंघन है। ये दिन उन घटनाओं की याद में मनाया जाता है जब 21 मार्च 1960 को दक्षिण अफ्रीका के शार्पविली में पुलिस ने रंगभेद के खिलाफ एक छात्र प्रदर्शन पर गोलियां चलाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप कई छात्र मारे गए थे। इस दिवस का उद्देश्य समाज में समानता लाने के लिए जागरूकता फैलाना और जातीय भेदभाव को खत्म करना है। और
राइटर देव, एंड बिफोर वी रिमेम्बर सम ऑफ द पर्सनालिटीज, लेट्स आल्सो विश आवर लिसनर्स अ वेरी हैप्पी नौरोज। नौरोज मुबारक टू ऑल आवर लिसनर्स, जो कि एक यू नो इट्स द न्यू ईयर ऑफ द पारसीज, इज़न्ट इट?
जी, पारसी समुदाय का ये एक महत्वपूर्ण पर्व है। पूरे साल में जितने पर्व मनाए जाते हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण पर्व है और इसे भारत के साथ साथ ईरान और अफगानिस्तान जैसे तमाम देशों में मनाया जाता है। इस त्योहार के दिन पारसी लोग एक दूसरे का अभिवादन हमाजोर रीति से करते हैं, जिसमें एक व्यक्ति का दाहिना हाथ दूसरे की हथेलियों के बीच रखा जाता है। बाद में अभिनंदन और शुभकामनाओं के उद्गार व्यक्त किए जाते हैं। इसके अलावा आज ही के दिन विश्व वानिकी दिवस, विश्व कठपुतली दिवस और विश्व कविता दिवस भी मनाया जाता है।
आपके पास किसका नाम सबसे पहले है?
जो बात मैंने किया कि कविता दिवस भी है, तो इसी क्रम में हम एक साहित्यकार को याद कर रहे हैं। केशव प्रसाद मिश्र उनका नाम है और इनकी आज पुण्यतिथि है। हिंदी के प्रमुख साहित्यकारों में से एक थे। उनके एक भाषण से प्रभावित होकर उन्हें प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय ने वर्ष 1928 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापक नियुक्त किया, जहां वे 1940 से 1950 तक हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर रहे। कालिदास की अमृत कृति मेघदूत के पद्यानुवाद की भूमिका में रस सिद्धांत का विवेचन केशव प्रसाद मिश्र ने किया था। साथ ही उन्होंने गद्य भारती, काव्य लोक, पद्मची नामक आदि अनेक ग्रंथों की भूमिका भी लिखी। केशव प्रसाद मिश्र ने 1925 में हिंदी वैधूत शब्दावली की रचना की और सरस्वती तथा इंदू जैसी पत्रिकाओं में इनके लेख छपते रहे। इनकी काव्य रचना हरिवंश गुण स्मृति पाठकों के बीच काफी प्रसिद्ध रही। और आज ही पुण्यतिथि है हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार गौरी पंत शिवानी की भी। हिंदी साहित्य जगत में शिवानी एक ऐसी शख्सियत रही जिनकी हिंदी, संस्कृत, गुजराती, बंगाली, उर्दू तथा अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ थी और जो अपनी कृतियों में उत्तर भारत के कुमायू क्षेत्र के आसपास की लोक संस्कृति की झलक दिखलाने और किरदारों के बेमिसाल चरित्र चित्रण के लिए जानी गई। महज 12 वर्ष की उम्र में पहली कहानी प्रकाशित होने से लेकर उनके निधन तक उनका लेखन निरंतर जारी रहा। उनकी अधिकतर कहानियां और उपन्यास नारी प्रधान रहे। इसमें उन्होंने नायिका के सौंदर्य और उसके चरित्र का वर्णन बड़े दिलचस्प अंदाज में किया। शिवानी के लेखन तथा व्यक्तित्व में उदारवादिता और परंपरा निष्ठता का जो अद्भुत मेल है, उसकी जड़ें इसी विविधतापूर्ण जीवन में थी। शिवानी की पहली रचना अल्मोड़ा से निकलने वाली नटखट नामक एक बाल पत्रिका में छपी थी, तब वे मात्र 12 वर्ष की थीं। इसके बाद मदन मोहन मालवीय के कहने पर उन्हें शांति निकेतन भेजा गया, जहां स्कूल और कॉलेज की पत्रिकाओं में बांग्ला में उनकी रचनाएं नियमित रूप से छपती रहीं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर शिवानी को गोरा पुकारते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर की सलाह शिवानी ने हिंदी में सलाह पर शिवानी ने हिंदी में लिखना प्रारंभ किया। शिवानी की एक लघु रचना मैं मुर्गा हूं 1951 में धर्मयुग में छपी थी। इसके बाद आई उनकी कहानी लाल हवेली और तब से जो लेखन क्रम शुरू हुआ उनकी अंतिम दो रचनाएं सुनहु तात यह अकथ कहानी और सोने दे उनके विलक्षण जीवन पर आधारित आत्मवृत्तात्मक व्याख्यान है। हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए शिवानी को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।
Of course, now if we remember people who have their birth anniversaries, a very, very renowned personality today is Ustad Bismillah Khan's birth anniversary, often referred to by the title Ustad, a musician par excellence credited with popularizing the shehnai, which is a reeded woodwind instrument. He played it with such expressive virtuosity that he became a leading Hindustani classical music artist. His name was indelibly linked with the instrument. While the shehnai had long held importance as a folk instrument played primarily in traditional ceremonies, Bismillah Khan Sahab is credited with elevating its status and bringing it to the concert stage. And even though he was a devout Muslim, but he performed at both Hindu and Muslim ceremonies and was considered a symbol of religious harmony. His fame was such that he was selected to perform for the ceremony at Delhi's historic Red Fort as the Indian flag unfurled at the hour of India's independence on 15th August 1947.
आप सभी जानते हैं कि बिस्मिल्ला खान ने कई हिंदी फिल्मों में भी संगीत दिया। उन्होंने हिंदी के अलावा कन्नड़ फिल्म सन्नादी अपन्ना, हिंदी फिल्म गूंज उठी शहनाई और सत्यजीत रे की फिल्म जलसा घर के लिए शहनाई की धुनें छेड़ी। आखिरी बार उन्होंने आशुतोष गोवारीकर की हिंदी फिल्म स्वदेश के गीत ये जो देश है तेरा में शहनाई की मधुर तान बिखेरी थी। उन्हें सन 1956 में संगीत नाटक अकादमी, सन 1961 में पद्मश्री, सन 1968 में पद्म भूषण और 1960 में पद्म विभूषण तथा 2001 में भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उसे सम्मानित किया गया। हिंदू विश्वविद्यालय शांति निकेतन ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान करके सम्मानित किया। श्रोताओं, आज ही है मानवेंद्रनाथ राय की जयंती। वर्तमान शताब्दी के भारतीय दार्शनिकों में क्रांतिकारी विचारक और मानवतावाद के प्रबल समर्थक थे और उनका भारतीय दर्शन शास्त्र में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा। 14 वर्ष की अल्पायु में ही वे भारत की स्वतंत्रता के लिए होने वाले क्रांतिकारी आंदोलनों में शामिल हो गए थे। 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। सशक्त संघर्ष के द्वारा भारत को विदेशी शासन से स्वतंत्र कराने वालों में वो भी शामिल थे और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने अनेक वर्षों तक जर्मनी, रूस, चीन, अमेरिका और मैक्सिको आदि देशों की यात्राएं की। मानवेंद्रनाथ राय ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी संगठनों को विदेशों से धन और हथियारों की उपलब्धता कराने में सहयोग दिया। वर्ष 1912 में उन्हें हावड़ा षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया गया और 6 साल की सजा सुनाई गई। उन्होंने सन 1922 में बर्लिन से द लैंगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र भी निकाला। आज ही जयंती है ख्वाजा खुर्शीद अनवर की भी। वे प्रसिद्ध संगीतकार थे जिन्होंने भारत में काफी लोकप्रियता हासिल की। उनका जन्म मियांवाली पंजाब में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। खुर्शीद अनवर ने अपने संगीत जीवन की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो से संगीत विभाग में प्रोड्यूसर इंचार्ज के रूप में की थी। आइए सुनते हैं उनकी एक मधुर धुन, मधुर संगीत। श्रोताओं, आज जन्मदिन है प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री रानी मुखर्जी का। उनका जन्म 1977 में हुआ था। उन्होंने 16 साल की उम्र में बंगाली फिल्म डियर फूल से अपने करियर की शुरुआत की और 1997 में फिल्म राजा की आएगी बारात से बॉलीवुड में एंट्री ली, पर उन्हें असली सफलता मिली 1998 में आई फिल्म गुलाम से। उसके बाद कई हिट फिल्में दी।
यस, एब्सोल्युटली, कुछ कुछ होता है चलते चलते एंड सो मेनी 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 मेमोरेबल फिल्म्स एंड लेट्स लिसन टू दिस ब्यूटीफुल मेडी दैट वी प्रिपेयर्ड।
जादू है तेरा ही जादू जो मेरे दिल पे छाने लगा, दीवाने मेरे तो पता क्या किया तूने, मीठा सा दर्द होने लगा। कभी सहज सहज, कभी नरम नरम, कभी सख्त सख्त, मोरा पिया मोरा पिया मोरा पिया। नजरों के तीर में बसाए प्यार।
और इसी खूबसूरत गीत के साथ ही हम चाहेंगे अपने श्रोताओं से कार्यक्रम आज सवेरे यही समाप्त करने की अनुमति, लेकिन आप लगातार बने रहिए आकाशवाणी गोल्ड के साथ।
Stay tuned for समाचार प्रभात on हिंदी न्यूज बुलेटिन followed by मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश at 8:15 AM. Thanks for tuning in. Have a great day ahead.
नमस्कार.
नमस्कार।